हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दादाजी काफी हद तक खुश हो गए थे। उन्होंने स्नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा था, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई है जो हमारे बच्चों पर इस कदर फख्र करता है। थैंक यू सो मच बेटा। ये सुनकर स्नेहा जी की आंखें भी नम हो गईं। तभी सौरभ आगे आए और बोले थे, अंकल जी आप नहीं जानते कि झलक हमारे लिए क्या है। वो हमारी जान है। हम लोग जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। वरना मेरे एक्सीडेंट के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी हो। लेकिन अब फिलहाल हमें जीने की एक और वजह मिल गई है। अब हमारी जिंदगी पूरी तरह अपने बच्चों के नाम हो चुकी है और अपने बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने लिए सब लोगों का इतना प्यार देखकर झलक का दिल पूरी तरह से गड़बड़ा उठा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी भी तरह का इमोशन आने नहीं दिया। उसने एकदम ब्लैक रंग के फॉर्मल कपड़े पहने थे। दरअसल अब झलक ने ब्लैक रंग को ही अपना परमानेंट कलर बना लिया था। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर पहनना ही प्रेफर करती थी। आज भी उसने ब्लैक रंग के कपड़े पहने थे, ब्लैक बूट्स पहने थे और वो एकदम कातिल हसीना की तरह दिखाई दे रही थी। वो यूं लग रही थी जैसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को अब कोई सीईओ मिलने वाली है, वरना वो बेचारी मैनेजर कब तक सारा बोझ संभालती रहती। हाँ, काफी काबिल है हमारी वो मैनेजर जिसने अब तक इंडस्ट्री संभाली हुई है, लेकिन अब आखिरकार हमारी पोती आ गई है, वो सब देख लेगी। ये बोलकर दिग्विजय सिंह जी ने बड़े ही प्यार से झलक के सिर पर हाथ रखा था, लेकिन ठीक उसी वक्त आरव जी भी आ गए थे और झलक का हाथ थामकर बोले, क्या बात है बच्चे, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो। झलक ने बड़ी बड़ी आंखों से सब लोगों की ओर देखा। आखिर में अनामिका भी आकर झलक के पास खड़ी हो गई थी। तभी झलक थोड़ी तेज और कड़क आवाज में बोली थी, आप सब लोगों को जो कुछ करना है कर लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। खुराना मेंशन में मेरा एक जरूरी सामान छूट चुका है। मुझे वो लेने के लिए वापस मुंबई जाना होगा और खुराना मेंशन से अपना कीमती सामान लेकर आना होगा। अब जैसे ही झलक ने ये कहा, सब लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। एक बार फिर से वे उसे किसी गंदगी में नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन स्नेहा जी तुरंत तड़प कर बोली थी, मेरे बच्चे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम वापस उस मेंशन में कैसे जा सकती हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या क्या हुआ था? नहीं नहीं बच्चे, तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर झलक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी दिग्विजय जी बोले थे, ठीक है तुम खुराना मेंशन जा सकती हो। वैसे भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सीईओ बनने के बाद तुम्हें ये सब देखना ही पड़ेगा, और हमारा एक बिजनेस भी मुंबई में था जिसे कुछ लोगों ने छल कपट से अपने नाम कर लिया है, लेकिन उसके असली डॉक्यूमेंट आज भी हमारे नाम पर ही हैं, क्योंकि जिन लोगों ने वो बिजनेस अपने नाम करवाया था उन्हें लगा था कि वो फाइल्स में कुछ भी कर लेंगे। तुम जाओ और उस प्रॉपर्टी को भी वापस ले आओ। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई परेशानी या डर नहीं होगा। हमें पूरा भरोसा है कि तुम सब कुछ संभाल सकती हो। दादाजी का इतना विश्वास देखकर झलक कहीं न कहीं खुश हो गई थी। वो आगे बढ़ी और अपने दादाजी को गले से लगा लिया था, और फिर देर न करते हुए सभी लोग मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए रवाना हो चुके थे। फिलहाल अब दादाजी नए सीईओ का अनाउंसमेंट करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने जिन जिन के साथ बिजनेस डील्स चल रही थी उन सभी लोगों को एक साथ बुलाने के लिए कह दिया था। उसमें आदित्य राणा भी शामिल थे जो उस मीटिंग में जरूर आने वाले थे, क्योंकि उनकी कंपनी बिजनेस इंडस्ट्री में काफी बड़ी भूमिका निभा रही थी। सभी ओनर्स का वहां होना बहुत जरूरी था ताकि सबको पता चल सके कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के नए सीईओ कौन है। वहीं शालिनी थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो गई थी और सोच रही थी कि अचानक दादाजी को इन सबसे मिलने की जरूरत क्यों पड़ गई है, क्योंकि आदित्य राणा की कंपनी के साथ 5,000 करोड़ की डील साइन हुई थी, इसीलिए उनका वहां होना बेहद जरूरी था। आदित्य राणा अपने काम को लेकर हमेशा ही पूरी तरह एक्टिव रहते थे। देर न करते हुए वो भी अब ऑफिस पहुंच चुके थे। धीरे धीरे सभी लोग वहां जमा हो चुके थे, लेकिन दादाजी और आरव जी अलग गाड़ी से वहां आ रहे थे। वे थोड़े पीछे रह गए थे क्योंकि इस बार झलक अनामिका एक अलग गाड़ी में थी और आज गाड़ी चला रही थी और वो काफी तेज ड्राइव कर रही थी। अनामिका चाहती थी कि वे लोग सबसे पहले इंडस्ट्री पहुंचे और पूरी इंडस्ट्री देख लें, इसीलिए अनामिका और झलक तेजी से वहां पहुंच गए थे और दोनों ने एक साथ इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। तब तक वहां लगभग सभी लोग जमा हो चुके थे, लेकिन रास्ते में जब दादाजी और आरव जी इंडस्ट्रीज की तरफ आ रहे थे वे आपस में रैंडम बातें करते हुए आ रहे थे। तभी अचानक उनकी कार में लगे छोटे से टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी थी। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि नैना ओबेरॉय अब एमपी चुनी जा चुकी हैं। नैना का जिक्र आते ही उनका पूरा चेहरा स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा था। अचानक नैना ओबेरॉय का चेहरा देखकर, हालांकि आरव काफी हद तक ठीक हो चुके थे, लेकिन नैना ने उनके साथ जो कुछ भी किया था वो सब वे आज तक भूल नहीं पाए थे, और अचानक से उन्हें एक बार फिर पैनिक अटैक आने लगे थे। अब झलक के साथ जो कुछ हो चुका था वो सब याद आते ही उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दादाजी के हाथ पैर भूल गए थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने टीवी की तरफ देखना छोड़ दिया था और सीधे ड्राइवर को ऑर्डर दिया था कि गाड़ी अस्पताल की ओर मोड़ दी जाए।
ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि वे अनामिका झलक को इन्फॉर्म करना तक भूल गए थे और इस तरह वे सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। हालांकि स्पीच वगैरह में उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, वो पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से नैना की शक्ल देखते ही आरव को पैनिक अटैक आने लगे थे, उसे ये साफ हो गया था कि नैना ने उन्हें कहीं ना कहीं बहुत गहरे जख्म दिए थे। दादाजी का दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। वहीं दूसरी ओर अनामिका और झलक जल्दी से इंडस्ट्रीज के अंदर कदम रख चुकी थी। गाड़ी पार्क करने के बाद वे दोनों सीधे ऑफिस देखने के लिए निकल पड़ी थी। इतना बड़ा ऑफिस हजारों एकड़ जमीन में फैला हुआ था, लगातार मंजिल पर मंजिल बनी हुई थी और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत था कि किसी एडवांस आर्किटेक्चर से कम नहीं लग रहा था। ये सब देखकर अनामिका कहीं ना कहीं हैरानी में डूब गई थी और बोली थी, तुम जानती हो मैं आज तक इससे पहले यहाँ कभी भी नहीं आई। दादाजी ने मुझे कई बार कहा था कि वो मुझे यहाँ साथ लेकर आना चाहते हैं, लेकिन हर बार मैं किसी न किसी बहाने से मना कर देती थी। और एग्जैक्टली जिस दिन दादाजी मुझे यहाँ लेकर आने वाले थे, उसी दिन मैं चोरी छुपे घर से निकल गई थी पापा को ढूंढने के लिए। थोड़ा रुक कर अनामिका आगे बोली थी, पता है आज मुझे सच में अफसोस हो रहा है कि इतनी खूबसूरत जगह मैंने पहले क्यों नहीं देखी। सचमुच यार, इतनी शानदार जगह हमारी है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अनामिका की बात सुनकर झलक ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ती रही। अब वे दोनों अंदर आ चुकी थीं। वहीं शालिनी, जो पहले से ही अंदर दरवाजे पर खड़ी होकर बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर्स का वेलकम कर रही थी, जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर झलक और अनामिका पर पड़ी, वो पूरी तरह से हैरानी से भर गई। अभी तक सभी लोगों को प्राइवेट एरिया में ही रोका गया था। प्लान ये था कि सभी गेस्ट के आने और वेलकम के बाद सबको कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया जाएगा, जहां नए सीईओ का अनाउंसमेंट होने वाला था।
लेकिन इस बात की कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं थी। शालिनी को तो यही लगा था कि दादाजी मल्होत्रा बस नॉर्मली उन सभी लोगों से एक बार मिलना चाहते हैं जिन जिन के साथ बिजनेस चल रहा है। वैसे भी दादाजी हर 15 दिन या महीने में एक बार पूरे ऑफिस की डिटेल्स लिया करते थे, लेकिन इस बार तो उन्हें ऑफिस आए हुए 2-3 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे, क्योंकि वे अनामिका को ढूंढने के लिए पहले मुंबई गए थे और फिर वहां से लौटे थे। इसी चक्कर में काफी समय निकल गया था, इसीलिए शालिनी को लगा था कि आज की मीटिंग सिर्फ बातचीत और अपडेट के लिए है। लेकिन अब दरवाजे पर अनामिका और झलक को एक साथ देखकर शालिनी का गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था।